हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आपका ये जो हर सप्ताह का कार्यक्रम होता है इसको भक्ति वृक्ष कहते हैं। और वृक्ष वृक्ष किसको कहते हैं? जो इसकी शाखाएं हों फिर फल लगे, फूल हो और फल, तो भक्ति का वृक्ष ये बढ़ेगा। भक्ति क्या है जिसका ये वृक्ष है जिसमें आप सब भाग ले रहे हैं? आपने जो दूसरा सत्संग सुना, शरीर और आत्मा में अंतर, और पशु से मानव इसलिए श्रेष्ठ है क्योंकि वो धर्म को जानता है, तो फिर शरीर का धर्म क्या है और आत्मा का धर्म क्या है? अगर धर्म ही हमारी विशेषता है तो हमको धर्म जानना पड़ेगा, शरीर का भी और आत्मा का भी। शरीर का धर्म, स्त्री के शरीर का धर्म अपना है, पुरुष के शरीर का धर्म अपना है, बच्चे के शरीर का धर्म अपना है, ब्राह्मण के शरीर का धर्म अपना है, क्षत्रिय के धर्म का शरीर अपना, उसका अपना है। तो शरीरों के धर्म अलग अलग हैं, ये तो ठीक समझ में आ रहा है ना भाई? मां का धर्म अपना है, बेटी का धर्म अपना है, उसको बोलते हैं हरेक का अपना स्वधर्म। लेकिन आत्मा का धर्म एक ही है, शरीरों के धर्म अलग हैं, लेकिन आत्मा का धर्म एक है। और जो आत्मा का धर्म है वो भक्ति है, जो आत्मा का धर्म है वो है भक्ति। और भक्ति का अर्थ होता है प्रेम और सेवा, भक्ति का अर्थ है प्रेम मई सेवा। अब आप देखिए कि इस संसार में कोई ऐसा जीव है जो प्रेम और सेवा नहीं करता है? कोई भी ऐसा है क्या इस दुनिया में? कोई ऐसा है जो कह सकता है कि मैं प्रेम नहीं करता हूं? ये जीव का धर्म है, करना ही पड़ेगा। सेवा कोई ऐसा है जो कहे मैं नहीं करता हूं? सेवा नहीं करता हूं ऐसा कोई हो सकता है? कर रहे हैं कि नहीं? वो बच्चे की सेवा करनी पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? बच्चे की सेवा करनी पड़ रही। जीव आत्मा का धर्म है सेवा करना और प्रेम करना। और दुनिया में सभी लोग, मानव तो छोड़ो पशु भी प्रेम और सेवा करता है, क्योंकि जीवात्मा तो वो भी है, जीव तो वो ही है। तो देखो एक छोटी चिड़िया भी अपनी छोटे बच्चे से प्रेम करती है, उसके लिए दाना ले जाके उसके मुंह में देती है कि नहीं? वो शेर से सब लोग डरते हैं, वो भी अपने बच्चे से प्रेम करती है, दूध पिलाती है कि नहीं? तो ये प्रेम करना और सेवा करना ये तो हर जीव का धर्म है, तो हमारा भी धर्म है। लेकिन ये सेवा और प्रेम इस दुनिया में हम किससे करते हैं वो देख लो, हम किसकी सेवा करते हैं, किससे प्रेम करते हैं? अब तो जैसे आपके अंदर क्या क्या उत्तर आएगा आपके अंदर से? परिवार की सेवा करते हैं, अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, तो ये अपने उत्तर आएंगे। फिर और कोई थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बोला मैं देश से प्रेम करता हूं, मानवता की सेवा करता हूं, ये शब्द आ जाएंगे सारे। लेकिन जो आत्मा का प्रेम और सेवा करने का धर्म है वो तो उसका है जिसकी वो आत्मा है। तो आत्मा है किसका? ये दूसरा प्रश्न पूछना चाहिए कि जैसे मैं मेरे बच्चे से प्रेम करता हूं अथवा मेरा बच्चा मेरे से प्रेम करता है, क्योंकि मेरा है इसलिए मेरे से करता है, तो मैं आत्मा किसका हूं? ये दूसरा प्रश्न पूछना चाहिए। ये शरीर तो हमारे को मां बाप ने दिया है, माता पिता ने ये शरीर तो दिया है, लेकिन आत्मा कहां से आई? आत्मा भगवान का अंश है, आत्मा भगवान का अंश है और शरीर प्रकृति का दिया हुआ है। तो आत्मा भगवान का अंश है तो प्रेम और सेवा किससे करना चाहिए? इसको भक्ति बोलते हैं। ये भक्ति का अर्थ है, प्रेम और सेवा भगवान। तो फिर ये प्रश्न उठता है, तो फिर बाकी जो हमारे सारे रिश्तेदार है, परिवार है, उसके प्रेम सेवा का क्या होगा? ये तो सामान्य ऐसे कोई प्रश्न तो ये उठ जाएगा। तो इसलिए भागवत में जो सिद्धांत है वो ये है कि जब हम भगवान की सेवा और प्रेम करेंगे तो हमको ये बात साफ समझ में आ जाएगी कि इस जगत में जो कुछ भी है वो सब भगवान का है। तो जो भगवान से प्रेम करेगा वो सबसे प्रेम करेगा, जो भगवान की सेवा करेगा वो सबकी सेवा करेगा। बस अगर भगवान को निकाल के उसकी सेवा और प्रेम छोड़ के बाकी किसी की भी प्रेम और सेवा करेंगे तो उसमें स्वार्थ आ जाएगा, मैं कर रहा हूं, तो ये आ जाएगा। इसलिए जितने नेता कहते हैं हम आपकी सेवा करते हैं, वो अपने पेट की सेवा करते हैं, आपकी कोई नहीं करता है, क्योंकि भगवान को बीच में से निकाल देते हैं, कहते हैं लेकिन करते नहीं। तो इसलिए भागवत में इसका उदाहरण देते हैं कि पानी पेड़ की जड़ में डालोगे तो सारा पेड़ हरा भरा हो जाएगा, और पत्ते के ऊपर पानी डालो रोज के डाली के ऊपर पानी डालो तो कोई लाभ है क्या? तो और अकेले किसी की सेवा प्रेम करना पत्ते के ऊपर पानी डालने के बराबर है, तो हरा भरा तो होगा नहीं। लेकिन भगवान की प्रेम सेवा करने का मतलब जड़ में पानी डालना है, तो बाकी सबको अपने आप सुख मिलेगा। आप अपने घर में भगवान को अगर ऐसे विराजमान करके उसकी सेवा कर रही हैं, क्या सेवा उसकी कर रही है? प्रसाद बना रही है, घर में भोजन बन रहा है, भगवान को भोग लगा दिया, आप प्रसाद सारे बच्चों को खिला दिया, तो सारे बच्चों को भोजन नहीं मिला, प्रसाद मिला। प्रसाद भगवान की कृपा है। अब आपने सेवा भगवान की और फल सबको मिल गया, और सबको जो प्रसाद मिला उससे उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, उसका मन पवित्र हो जाएगा। भगवान का प्रसाद और भगवान अभिन्न है, कोई अंतर नहीं है। प्रसाद शब्द के अर्थ होता है कृपा, आशीर्वाद। प्रसाद कहते हैं आशीर्वाद को। तो अगर एक काम आप शुरू कर दें भगवान की सेवा का अपने घर में, कि भगवान को घर में बिठा दें, मालिक उसको बना दें, हम हैं उसके, बाकी सब जो हम अपना मान रहे हैं अथवा जो हमको अपना मान रहे हैं वो सब इस शरीर को हमकार अपना मानते हैं, आत्मा को नहीं जानते। जिस जिस को हम अपना मान रहे हैं, जो जो हमको अपना मान रहे हैं, वो हमारी आत्मा को जानते भी नहीं। ये सच है कि झूठ है? ये सब शरीर के स्तर के रिश्ते हैं जिनमें हम बंधे हुए हैं, लेकिन आत्मा का रिश्ता तो हमारा सीधा भगवान के साथ है। अगर इस रिश्ते एक को समझ लेंगे तो केवल घर में भगवान को, जो घर का मालिक है, उसको बना के बिठा दो। और आप ऐसे मान लो कि घर में पहले आप चार सदस्य हो, भाई पति पत्नी बेटा बेटी चार हो के बहू पांच हो, तो भगवान को दो और घर का सदस्य गिन लो, सात कर लो। आप समझ लो अब हम सात रह रहे हैं। अब भगवान को आपने अपना सदस्य बना लिया तो लक्ष्मी आपके घर में आ गई कि नहीं आई? भाई नारायण आया तो लक्ष्मी आई कि नहीं आई? अब घर का मालिक कौन है? मानो राधा कृष्ण है, लक्ष्मी नारायण है। तो अब आपके घर में कोई समस्या होनी नहीं है, मालिक घर का दूसरा हो गया। हम जब तक स्वयं मालिक है तब हमारे घर की समस्या रहती। घर का मालिक बना दो उनको, घर में बना दो, ठाकुर जी को बिठा दो, फिर रसोई तो रोज बनानी ही है। अब घर में जो सबसे बड़ा होता है उसको पहले देते हैं या सबसे छोटा होता है उसको पहले देते हैं? अगर भगवान को ऐसे बिठा दो समझ लो बड़ा है, दे दो, और नहीं तो गोपाल को बिठा दो छोटा है समझ लो, लेकिन देनी पहले उसको। चाहे बड़ा बना के बिठाओ या छोटा बना के बिठाओ, भगवान दोनों हाल में राजी। अगर बड़ा बनाओगे तो भी राजी है और बच्चा बनाओगे तो भी राजी है, लेकिन दोनों हालत में पहले उसको देनी। तो उसको प्रसाद दे दिया, और जब तक भगवान को कितना प्रसाद देना चाहिए ये भी अगर विचार करना है तो एक नौजवान आदमी जितना खाता है उतना एक व्यक्ति के लिए होना चाहिए। ऐसे नहीं है हम तो खाए हैं पिज्जा पास्ता और भगवान को दो तीन इलायची दाने डाल देंगे, तुम खाते रहो। ये तो भाई ठीक नहीं है। भगवान का जो हम स्वयं एक व्यक्ति खाता है, इतना भगवान के लिए अलग बर्तन रखने चाहिए, साफ प्रसाद भगवान को अर्पण करना चाहिए और फिर थोड़ी देर प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान आपका दिया हमने प्रेम से आपकी सेवा समझकर पकाया है, आपके लिए पकाया, आप इसको स्वीकार कीजिए और आपकी कृपा हमारे परिवार के ऊपर हो, ऐसी हमारी कामना है। और बैठ के उस वक्त भगवान का नाम, कितना एक आदमी खाने में कितना टाइम लगाता है, कुछ टाइम तो लगता है ना। अच्छा, आपके घर में कोई मेहमान भोजन करने आए तो क्या आप क्या करोगे, उसको थाली देके फिर जाओगे कहीं घूमने के, टीवी देखोगे, हाँ पूछोगे क्या चाहिए, नहीं तो कम से कम बैठे तो रहोगे, कुछ बुलाएगा तो उनको भोजन देके आप बैठ के उसी के नाम को याद करते रहोगे, आप प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो वो 5-7 मिनट आप भगवान का नाम बैठ के जप लीजिए। अब क्या हुआ, उसके बाद जैसे ताली बजा दिया कि भगवान आपका प्रसाद हो गया, वैसे उनको कोई जरूरत नहीं है, आप जितनी देर तक उनको प्रेम से खिलाओगे उतनी देर खाएगा। आप बोलेगा अभी उठाते तो बोले उठा के जाओ तुम्हारा है। अब इसमें तुम्हारे भाव के ऊपर सारा है। अब बच्चे को देखा है कैसे जबरदस्ती खिला, तुरा खा ले बेटा, कैसे उसके पीछे भागती हो। क्या बच्चों को खिलाना कितना मुश्किल है मालूम है, कितना मुश्किल से खिलाना पड़ता है, घूम फिर के फिर जाती है, इतना खा ले बेटा, ये चाचा का खा ले, मामा का खा ले, दादू का खा ले, ये ड्रामा करना पड़ता है। तो भगवान को अगर बच्चा बनाया है तो ऐसे थोड़े प्रेम से बोला, कभी रसमलाई खा ले, कभी गुलाब जामुन खा ले, कभी आइसक्रीम खा ले, कुछ तो खिलाना चाहिए। और फिर भगवान तो आंखों से खा लेते हैं, वो आपके हृदय में प्रेम को देखते हैं कि ये मेरे लिए बना रहे, और फिर वो सारे परिवार को खिला दो। ये आपकी भक्ति शुरू हो गई, ये आपका प्रेम की सेवा भगवान की शुरू हो गई। भगवान आपके घर में आपने पधरा दिए, अब घर के मालिक वो है, आपको चिंता क्यों। तो आपका सारा जीवन ही बदल जाएगा। आपका जीवन जहां भगवान रहते हैं उसको वैकुंठ बोलते हैं। वैकुंठ का अर्थ होता है जहां कोई चिंता न हो, जहां कोई परेशानी नहीं हो, यहां कोई दुख नहीं हो। तो भगवान, ये भगवान की भक्ति शुरू होती ही है जीभा से, और जीभा के लिए खाने को कुछ चाहिए, और खाना भगवान का प्रसाद चाहिए, और फिर जीभा को बोलने के लिए कुछ न कुछ बोलना पड़ता है। और वैसे मेरे ख्याल में बहुत कम बोलती हैं, बच्चे लोग बोलती हैं, बच्चियां कम बोलती हैं ना, ज्यादा बोलती हैं कम बोलती हैं बेटा, बोलो माँ, ज्यादा बोलती हैं। वैसे तो पुरुष ज्यादा बोलते हैं, दुकान के जा सारा दिन लोगों से बातें करते रहते हैं, लेकिन वो कुछ काम के लिए बातें करती हैं, और अपन सबको बोलना तो पड़ता ही है। और बोलते क्या है आप ये कभी विचार करो, हम बोलते हैं तो क्या करते हैं, किसी न किसी की अच्छाई या बुराई, अच्छाई भी करते हैं किसी की, किसी की बुराई करते हैं, अपनों की करते हैं, परायों की नहीं करते। अब अपना बना दिया भगवान को घर में, अब उसी की अच्छाई बुराई करनी है तो करा करो, दूसरे की क्यों करते हो, वो उठा के रोज उसकी कथा क्या करो। तो आपको करना बोलना तो है ही, बोलना बंद तो करना नहीं है, बोलना तो बंद होगा नहीं, किसी न किसी की तो कथा करनी है भाई, किसी अड़ोस पड़ोसी की कथा करनी है। तो एक दिन मानो के वो राजा रानी की सास की कथा करोगे, वो उसको घर से जाने नहीं देती, आपको करना ही ऐसे है, सास की बुराई करनी है तो राजा रानी की सास की बुराई कर लो। अब ये आपकी भक्ति हो गई, बात तो वही कर रहे हो। वो एक उसकी ननंद है, जटिला उसका नाम है, कुटिला उसकी सास का नाम है, और वो उसको कभी कृष्ण बांसुरी बना के बुलाता, उसको बुलाता है, वो कहती है तुम मत जाओ। अब वो कैसे जाए, तो ऐसे अगर मतलब मेरा कहने का है कि आपको जो बोलना है उस बोलने के लिए इतना सब्जेक्ट मैटर पड़ा है, तो आप वो कृष्ण परम पुरुष भगवान दसम स्कंद पूरा श्रीमद् भागवत का, उसमें ऐसी कथाएं हैं जिसमें अच्छाई भी है और बुराई भी, आपको जो चाहिए वो कर लो। अच्छाई करने में मजा आए तो अच्छाई कर लो, बुराई करने में तो बुराई कर लो, लेकिन करो तो भगवान और भगवान के भक्तों की नहीं। भाई बुरा नहीं करे तो उसमें कंस की बुराई करने के लिए बहुत कुछ पड़ा है आपके लिए, कंस ने ऐसा कर दिया, देखो उसके बच्चे मार दिए, बड़ा आतंकवादी था, अखबार के अंदर पढ़ के आतंकवादी देते हैं, उसकी बात कर लो। अब आपका जो बोलने का काम है वो भक्ति हो गया, फिर बोलना तो पड़ेगा ही, बंद तो नहीं किया जा सकता। तो पहले असल में अपने घरों में यही होता था, दादी दादियां राम कथा वो ये भागवत की कथा बच्चों को सुनाती थी, बच्चे भी खुश और उनके भी बोलने का कोटा पूरा हो जाता था। अब ये कोटा टीवी पूरा करते तो हमारा कोटा खराब, पहले ये कोटा हम पूरा करते तो फिर आखिर आदमी को एक दिन रात में कितने 4-5 हजार 10 हजार शब्द बोलेगा, कितना बोलेगा वो, कहीं कहीं अगर बोल दिया तो फिर तो दोबारा खोलने की जरूरत नहीं है, तो ये अच्छे काम में कुछ बोल दिए तो अच्छा ही है। कभी हम बोलते हैं आप थोड़ा कीर्तन ज्यादा कर लो, अच्छी तरह से कीर्तन जप करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान का नाम है, और आपकी कोटा कुछ पूरी हो जाएगी तो और बेकार का बोलना कम हो जाएगा, जब बचेगा कम ना तो कम होगा। तो भक्ति का शुरू करने के लिए भगवान को घर में बिठा लो, और कौन ऐसा दुनिया में मूर्ख होगा जो भगवान को, जो लक्ष्मी सहस्र लक्ष्मी और राधा रानी की सेवा में है उसको घर में लाएगा नहीं, कौन ऐसा मूर्ख तो कोई है नहीं कि भगवान को और लक्ष्मी को घर में रखने में किसी को आपत्ति तो है नहीं। सारे देवी देवता जिनकी सेवा में होते हैं ऐसे भगवान को घर में लाने से अपने आप सब संतुष्ट हो जाएंगे ना, तो उसको लाके घर में बिठाना बस इतना ही करना है, कोई मुश्किल तो काम है नहीं। तो भक्ति शुरू करने के लिए तो हमारे को एक मतलब कोई 10 पैसे की जरूरत भी नहीं है, टीवी बहुत महंगी है लेने के घर में लिए, फ्रिज लेना बहुत महंगा है, आप सबके पास मोबाइल है उसका महीने का बिल कितना आता है, कम से कम कितना आता है, 200-300 रुपये तो बस, 500 रुपये तो आएगा, 200-300 तो आएगा ही आएगा ना, और उसके ऊपर करते क्या है, हेलो हाय हा हेलो हेलो हाय हा हेलो बस यही और कुछ करते हो, बात कम होती है, जितनी बात है उससे ज्यादा हेलो हाय होता है। तो ये सब चीजें घर में सबके हैं और इन सब चीजों से भगवान सस्ता है। क्यों भगवान ने अपने आप को इतना सस्ता बना रखा है, ताकि सब लोग उसकी सेवा करें, क्योंकि भगवान की सब सेवा कर सके। भगवान बहुत महंगा होता तो केवल सेठ साहूकार खर्च घर भर में ला सकते थे, अब ऐसा एक चित्र आपको घर में रखने के लिए कितने का आएगा, 200-400 रुपये का आएगा, टीवी से तो कम से कम कम से कम कीमत का होगा। एक भगवत गीता यथा रूप आपकी आएगी 100-125 रुपये में, टीवी आपको फोन का बिल महीने का 200 रुपया है, और ये 150 रुपया आपके आजीवन भगवान से बात करने का साधन आपने खरीद लिया, रोज उठा के भगवान से बात करो। पर्सनल मोबाइल जैसे सबके पास है ऐसे पर्सनल गीता सबकी अपनी होनी चाहिए, पर्सनल कॉपी पीसी कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, पर्सनल मोबाइल, पर्सनल भगवत गीता हरेक को अपनी होनी चाहिए। उसके ऊपर जैसे बच्चे कहते हैं मेरा मोबाइल है, ऐसे हमको बच्चों में ऐसी जिज्ञासा पैदा करनी चाहिए कि वो इस शास्त्रों को बचपन में उनको सिखाया जाए, बहुत आवश्यकता है बच्चों को संस्कार देने की। और आप लोगों से हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप माएं जो है वो बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं, बच्चे जब तक बच्चा 10 साल की उम्र का है, उसके बाद बच्चा आपकी बात भी नहीं मानेगा, हमारी भी नहीं मानेगा, किसी की भी नहीं मानेगा, अब फिर मानेगा कंप्यूटर की बात, मोबाइल की बात, टीवी की बात, हमारी नहीं मानेगा। आप देख लेना बच्चे आपके 10 साल के बड़े किसकी बात मानते हैं। तो अभी आपको उनको संस्कार देने हैं जब वो छोटे हैं, जब आपके ऊपर पूर्ण आश्रित हैं, जब वो थोड़े, फिर वो तो अपने दोस्तों के साथ टाइम तो देंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो अभी आपका दायित्व है घर के अंदर आध्यात्मिक वातावरण बनाना, उससे लाभ क्या होगा, छोटे बच्चों में संस्कार अपने आप अभी से आ जाएंगे। छोटा इतना बच्चा ये बैठा है ना, जैसे ये छोटा लालू, क्या नाम है इसका, गौरांश, गौरांश, बहुत सुंदर गौरांश है। अब ये छोटा सा बच्चा है, ये माँ को देखेगा, भगवान को प्रणाम करे तो वो भी सो जाएगा अपने आप, क्योंकि बच्चा तो नकल ही करेगा, तो नकल ही करेगा ना। तो जाने अनजाने में भगवान को प्रणाम, भगवान तो देखेगा ये मेरा प्रेम को प्रणाम करेगा, तो ये भगवान तो इसका प्रणाम काउंट कर लेगा, और फिर वो बच्चा देखेगा घंटी बजाते हुए घंटी बजाना शुरू करेगा, तो उस बच्चे में संस्कार अपने आप बगैर प्रयास के आ जाएंगे। और बड़े बच्चे को आप कहो कि बैठ के माला जपो, नहीं जपेगा, नहीं करेगा। तो इसलिए आपका तो इस वक्त कलयुग में सबसे ज्यादा दायित्व घर में माताओं के ऊपर है। पुरुष तो बेचारे सुबह भूत बन के जाते हैं, 10 बजे जाते हैं सुबह भूत बन के, रात को 10 बजे आते हैं, ये सच है। हमारी एक बहुत दूर की भाषा में, अहमदाबाद में सत्संग करता हूँ, ढाट के महेश्वरी हमारे हैं, वो कहते हैं सत्संग 10 बजे शुरू करेंगे। अभी 10 बजे रात को क्यों? बोला सुबह गसे जाते हैं और 10 से आते हैं, सुबह के जाएगी शाम को आते हैं, उनको तो समय है नहीं बच्चों को देखभाल करने का। ये सत्य है, ये मानना पड़ेगा कि पुरुष बच्चों की देखभाल नहीं कर पाते। पैसे लाके दे देंगे, स्कूल की फी दे देंगे, ट्यूशन की जरूरत कब से पड़ गई बच्चों को? जब से माता पिता के पास समय नहीं है, और पिता के पास समय नहीं है बच्चे को देने का। पहले तो टाइम था, पिता जो बच्चों को पुरुष बैठ के पढ़ाते थे, तो अब उनके पास टाइम है नहीं बेचारे के पास। तो अब ये सारा दायित्व आप समझ लो कि आपके ऊपर है। कलयुग में किले की आखिरी दीवार नारी है। अगर ये बच्चों के संस्कार सुरक्षित रखेगी, धर्म कर्म को अपने घर में बनाएगी, तो बच्चे संस्कारित होंगे तो भविष्य इस दुनिया का अच्छा है। नहीं तो आने वाले समय में इस दुनिया में इतने वर्ण शंकर पागल पैदा होंगे कि जीना मुश्किल हो जाएगा। तो ये आपकी मजबूरी है, आपको ये करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो आने वाली पीढ़ी बहुत दुखी हो जाएगी, उनके लिए संस्कार बचेंगे नहीं। तो ये कैसे भी, जैसे दवा पीना मुश्किल होती है और दवा पीते हैं क्योंकि जिंदा रहना है, तो आप समझ लो कि कमा किसके लिए रहे हैं? बच्चों के लिए। तो उनका भविष्य ही अगर तारा अंधेरे वाला होगा तो हमारा जीवन जीने का मतलब क्या है? काय के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं जब बच्चों के लिए कुछ सुरक्षित उनका भविष्य छोड़ नहीं सकते हैं? तो संस्कारित बच्चों को करने का दायित्व आपके ऊपर है। घरों के अंदर आप ऐसा वातावरण पैदा करो, उसमें ये प्रेम से ऐसा वातावरण पैदा करो कि घर के अंदर विद्रोह भी नहीं होना चाहिए। वैसे भगवान के आने से तो शांति होनी चाहिए, लेकिन भगवान को घर में ले जाकर और घर में अशांति मत पैदा करना। कभी कभी थोड़े से हम जो है जरा उसको ऐसे लेते हैं कि कुछ वातावरण खींचातानी का होता है, वो नहीं करने का है, बुद्धिमानी का उपयोग करना है। तो शास्त्र को अब गृहस्थी अगर अपने घर में भगवान का छोटा सा मंदिर बना दे, छोटा मैं इसलिए कह रहा हूँ सब छोटे फ्लैटों में रहते हैं, बड़ा मैं कहता अगर कोई बड़ा जमींदारी का पड़े 10 एकड़ का घर होता, 25-50 गाय बाहर होती तो बड़ा मंदिर बनाया होता। अब तो घोंसले में रहते हैं, इन जो फ्लैट है इसको घोंसला बोलते हैं, चिड़िया का घोंसला, जाके रात को बंद करो, अंदर बैठ जाओ, सुबह निकल के बाहर उड़ के चले जाओ, ये तो घोंसले हैं बेचारे। घोंसले इतने महंगे हो गए, न धरती अपनी न आसमान अपना बीच में लटके हुए। घर जो थे तो है नहीं, ये इसको घर तो नहीं बोलते हैं, तो घोंसलों में रह रहे। तो इसलिए तो घोंसले के अंदर भगवान छोटे से घर में भी बैठ जाए, कोई परेशानी नहीं। आप लोग जो गांव से कोई आए हैं देखे घर कितने बड़े होते हैं, गांव के घर देखे हैं? ला कोई बात नहीं, बिचारी चली गई होगी। अरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो घर में एक ठाकुर जी का मंदिर, लेकिन अच्छे स्थान पे बनाना, ड्राइंग रूम आदि में, जहां जो आए भगवान का दर्शन करे, क्योंकि सामने भगवान होगा तो सामने वाले का मन का वातावरण बदल जाएगा। आने वाले का। ऐसे नहीं भाई वो अलमारी के अंदर छुपा के रखा, दरवाजा ही बंद है, खुली जगह पे, अच्छी जगह पे, जहां जो आए उसको दर्शन भगवान के हों। और दूसरा काम घर में करने का, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद परिवार सारा खाए। और तीसरा काम थोड़ा सा रोज चर्चा जो करनी है वो भगवान की गीता भागवत से थोड़ी चर्चा घंटा आध घंटा रोज करनी चाहिए। और चौथा काम भगवान का नाम जपने का, जो हमारा धर्म है आत्मा का, उस धर्म का पालन करने का। मानव बनते हैं तो धर्म पालन करेंगे, और वो धर्म भगवान से प्रेम और सेवा मांगना है। और ये हरे कृष्ण मंत्र राधा रानी को प्रार्थना है कि हमारे को भगवान श्री कृष्ण की सेवा दीजिए। तो ये मंत्र बैठ के थोड़ा जपना, बस ये चार काम करना तो आपका धर्म पालन हो गया, आपका जीवन सर्व उत्तम हो गया, और आप इस संसार में सुखपूर्वक रहेंगे। और संसार एक दिन छोड़ना पड़ेगा तो दुख नहीं होगा, क्योंकि भगवान के पास जाने का गारंटी है, कहीं भटकने का जरूरत नहीं है। तो जब तक रहेंगे भगवान के बन के इस दुनिया में रहेंगे, परिवार को पालेंगे, और जब जाएंगे तो वापस अपने घर भगवान के पास जाएंगे जो हमारा अपना है। ये दो बातें समझ में आ जाएं तो जीवन सफल। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है? वो तो आधा घंटा होने वाला है। किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है? आपको ये चार काम करने में कोई नहीं, मतलब कोई, मेरा कहने का मतलब ये चार काम करने में कोई आपको परेशानी है क्या? आसान काम है, मुश्किल है? बहुत आसान है। मैंने कहा टीवी फिर से सस्ते हैं सारे काम, ये कुछ मुश्किल वाला काम नहीं।
हाँ बड़े बोलते हैं जैसे जैसे हम रख देते हैं उनकी पूजा करते रहे।
अच्छा है,
अब ये जैसे
बिठाते हैं आपका है। आप घर में कहते हमें बच्चा एक ही पैदा करना है, और कहते भगवान 25 बचा दिए, क्या मुसीबत है? बच्चे तो ज्यादा पैदा नहीं करने, बाकी भगवान सारे इतने आगे इकट्ठे किए, परेशानी घर में क्यों पैदा कर? नहीं मैं तो ऐसे ही